पुष्कर जी ने अपनी घोषणा कर दी थी, पर उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि इस एक घोषणा से कितनी जिंदगियां उथल-पुथल में आ जाएंगी। अरुणिमा अपने दर्द को बयां ना कर पाकर पार्टी छोड़कर बाग में चली गई थी, जबकि आस्तिक को न तो अरुणिमा से न ही वहां खड़े लोगों से कोई मतलब था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो बेहद खतरनाक लग रहा था। उसकी निगाहें सिर्फ पुष्कर जी पर टिकी हुई थीं, जो अपने माफिया गिरोह के साथ खड़े होकर अपनी घोषणा को अमल में लाने में जुटे हुए थे। आस्तिक गुस्से में पुष्कर जी की ओर बढ़ा ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आस्तिक ने गुस्से से पीछे देखा तो उसने पाया कि जिस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा था वो उसे वहां खड़े लोगों के बीच से बाहर खींच रहा था। वो शख्स आस्तिक को सीधे लाइब्रेरी में ले गया और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। आस्तिक गुस्से में स्टडी टेबल के पास गया और वहां रखा सारा सामान जोर से जमीन पर फेंक दिया। टेबल पर जो भी सामान था वो अब बिखरा पड़ा था। आस्तिक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसे जो भी हाथ लग रहा था वो सब कुछ तोड़ रहा था। फर्नीचर, शोपीस, यहां तक कि लैपटॉप को भी उसने इतनी बुरी तरह तोड़ा कि वो अब बेकार हो गया था। अगर उस वक्त पुष्कर जी उसके सामने होते तो शायद अपने गुस्से में आस्तिक उन पर गोली भी चला देता। आस्तिक का सब्र जवाब दे चुका था, पर इससे पहले कि आस्तिक और ज्यादा बेकाबू होता, जो शख्स उसे यहां लाया था उसने आस्तिक की बाजू पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल आस्तिक के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा। आस्तिक का चेहरा दूसरी ओर झुक गया, पर उसकी आंखें अब भी गुस्से से लाल थीं। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और जलती हुई निगाहों से सामने देखकर चिल्लाया, माँ! आस्तिक के सामने नेहा जी खड़ी थी, जिन्होंने उसे पार्टी से यहां लाया था। उन्होंने आस्तिक को पार्टी में ही देखा था कि वो गुस्से में पागल हो रहा है, इसलिए स्थिति बिगड़ने से पहले ही उन्होंने आस्तिक को स्टडी रूम में ले आई थी। नेहा जी ने गुस्से में आस्तिक की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अपने गुस्से पर काबू रखो आस्तिक, तुम्हारी एक बेवकूफ़ी तुम्हें सब कुछ कमा सकती है। पर आस्तिक बेकाबू होते हुए चिल्लाया, और मेरे पास बचा ही क्या है जो मुझसे छीना जा सके? पुष्कर राजचंद ने तो सब कुछ छीन लिया है, और क्या छीनना बाकी रह गया है? यहां तक आकर मैंने क्या हासिल किया है बताइए? पुष्कर रायचंद का भरोसा हासिल किया है तुमने, नेहा जी आस्तिक की बाजू पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली। आस्तिक ने अपनी जलती हुई निगाहों से नेहा जी को देखा तो नेहा जी उससे भी ज्यादा गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, हाँ आस्तिक, इतने सालों से इस खेल का हिस्सा बनकर तुमने जो हासिल किया है उसे भरोसा कहते हैं। पुष्कर रिटायर होना चाहते हैं और उसके बाद ये जगह तुम्हारी होगी, पर अपनी जगह तुम्हें देने के लिए जो चीज़ तुम्हें हासिल करनी थी वो है पुष्कर का भरोसा। उनका भरोसा तुम पर है, इसीलिए अपने बाद वे तुम्हें माफिया का वारिस बना रहे हैं, और जो वे तुमसे मांग रहे हैं वो हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। नहीं बढ़ाना है मुझे वंश आगे उस गवार अरुणिमा के साथ। उस लड़की को मैं अपने पास एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप चाहती हैं कि मैं उसके साथ सोऊं, उसके साथ बच्चा पैदा करूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ, मैंने इन सब के लिए बहुत कुछ खोया है, और आपके ही कहने पर मैंने उस चाहिल अरुणिमा से शादी की, जबकि आप जानती थीं कि मैं सिर्फ अमायरा से प्यार करता हूँ। अमायरा के अलावा न तो मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को इमेजिन कर सकता हूँ, और ना ही मेरी ज़िंदगी में किसी और के लिए कोई जगह है, और उस अरुणिमा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपने ही कहा था ना कि जिस दिन मुझे अंडरवर्ल्ड की गद्दी मिल जाएगी मैं अरुणिमा को छोड़ सकता हूँ, लेकिन सब कुछ गलत हो गया है। वो अरुणिमा अभी भी मेरे गले में बंधी हुई है, और मैं अपनी अमायरा के साथ होकर भी उसके साथ नहीं हो पा रहा हूँ। इन सब के बावजूद पुष्कर रायचंद चाहते हैं कि मैं उस लड़की के साथ बच्चा पैदा करूँ। अगर पुष्कर चाहते हैं कि तुम्हारा और अरुणिमा का बच्चा हो तो तुम्हें ये करना होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अमायरा से प्यार करते हो या मैडोना से, लेकिन इस खानदान को बच्चा तुम्हें अरुणिमा से ही देना होगा। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुम्हारी शादी अरुणिमा से ज़रूर हुई है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी को भी रखने की आज़ादी है। बस ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पिछले एक साल से तुमने इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि तुम्हारी और अरुणिमा की मुँह बोली शादी के बारे में दुनिया को कुछ भी पता न चले, पर अब बात वारिस की है। दुनिया के सामने अरुणिमा ही तुम्हारी बीवी है, और तुम्हें उसके साथ एक बच्चा करना होगा ताकि ये खेल जो हमने मिलकर खेला है उसमें जीत हासिल कर सके। आस्तिक तस्से और हैरानी से नेहा जी को देख रहा था। नेहा जी ने आस्तिक की कलाई छोड़ दी और पास रखे कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उन्होंने अपने एक पैर को दूसरे पर रखा और अपनी हथेलियों को कुर्सी के हत्थे पर रखते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब करना आसान था? दुनिया के सामने एक मुखौटा पहनकर रखा है मैंने, अच्छाई का मुखौटा, और इसी मुखौटे के पीछे मैंने सबका भरोसा जीता है, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन तुम्हें इस जगह पर देख सकूं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए, बस तुम्हारा प्यार तुम्हें नहीं मिला और तुम उसके लिए इतना पागल हो रहे हो। जरा मेरे बारे में सोचो, मुझे तो कभी वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। माँ बाप ने पैसा देकर पुष्कर से मेरी शादी करवा दी। शादी से पहले मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे ये शादी करनी है या नहीं। पुष्कर की अय्याशी और उसकी आवारगी के बारे में मुझे शादी से पहले से पता था, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि शादी के बाद पुष्कर बदल जाएगा, पर वो नहीं बदला। शादी के बाद भी उसकी रंगरलियाँ चलती रहीं, और जब मुझे पता चला कि उसकी अय्याशी का अगला शिकार मालिनी हुई है तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पुष्कर अय्याशी करने में नंबर वन था वहीं मालिनी मुझसे चलती थी। ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, और मुझे हैराने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। पर हद तो तब हो गई जब मालिनी प्रेग्नेंट हो गई। वो अपना बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन तब तक मैं तुम्हें वहां से लेकर आ चुकी थी। मैं वापस पुष्कर के पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी जिसमें भरोसा और प्यार दोनों ही ना हो। पर तभी मुझे पता चला कि मालिनी अपनी जुड़वा बच्चों को जन्म देते वक्त सीरियस हो गई है और अपनी आखिरी सांसों में मुझसे मिलना चाहती है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मालिनी मुझसे क्यों मिलना चाहती है, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास मेरे अलावा कोई और नहीं था और पुष्कर ने पहले ही उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। मालिनी ने जाने से पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे दी। मेरा तो मन किया था उन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दूं और ऐसा करने वाली भी थी, पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा, जिन इंसानों ने मिलकर मेरी जिंदगी को खिलवाड़ बना दिया है, मैं उन्हें सुकून से कैसे जीने दे सकती हूँ। मालिनी तो मर चुकी थी लेकिन उसकी औलाद मेरे पास थी और बस उसी दिन से मैंने अपना ये खेल शुरू किया जिसमें मैंने पुष्कर से वो सब कुछ छीनने का वादा किया था जो उसने हासिल किया है, उसकी पोजिशन, पावर, कंपनी, प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि माफिया का पावर भी। मैंने सोच लिया था कि ये सारी चीजें आगे चलकर मेरे बेटे को मिलेंगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के इतने साल दिखावे में गुजारे हैं और तुम्हारी वजह से इसे खराब नहीं होने दूंगी आस्तिक। मैं कभी पुष्कर के पास वापस नहीं आती, लेकिन मैं पुष्कर के पास वापस आई और दुनिया के सामने एक विक्टिम कार्ड खेला ताकि लोग मुझे महान समझें और मुझ पर शक ना करें। पुष्कर ने भी मुझे महान समझा और उसने कभी भी मुझ पर कोई सवाल नहीं उठाया।
और इस महानता का पहला खेल था मालिनी के बच्चों की परवरिश। सारी दुनिया को पता था कि चेतन और बेला पुष्कर की नाजायज औलाद है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अपनी औलाद से बढ़कर परवरिश दी, इसीलिए आज लोग मेरा नाम इज्जत से लेते हैं। पर मुझे अपना बना बनाया खेल खराब होता तब नजर आया जब तुम और चेतन 17 साल के हो रहे थे। तुम दोनों उम्र की दहलीज पर कदम रख रहे थे और तुम दोनों की बॉडी में भी बदलाव आ रहे थे। तभी मुझे पता चला कि पुष्कर का झुकाव धीरे धीरे चेतन की ओर बढ़ रहा है। चेतन पुष्कर को ये एहसास दिला रहा था कि वो आगे चलकर उनकी गद्दी संभाल सकता है। मैं उस सांप के फन को उठने से पहले ही कुचल देना चाहती थी, इसीलिए मैंने धीरे धीरे चेतन को दवाइयां देनी शुरू कर दी और जब तक चेतन इस लायक हुआ कि कुछ कर सके, वो नपुंसक हो चुका था। तुम्हें क्या लगता है चेतन की ये हालत अपने आप हुई? नहीं, बल्कि उसे ऐसा मैंने बनाया। तुम्हें क्या लगता है बेला के चाल चलन के बारे में? मुझे पता नहीं है, पर बेला से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की है, आज नहीं तो कल उसे शादी करके दूसरे घर जाना है। मेरी असली प्रॉब्लम तो चेतन था जो मेरे मकसद के बीच आ रहा था, इसलिए मैंने पहले उसे अपने रास्ते से हटाया। और जब पुष्कर को चेतन के बारे में पता चला तो उनका सारा फोकस तुम्हारी ओर आ गया। मेरे इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई है। पुष्कर अब तुमसे एक वारिस की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वो तुम्हें अपना साम्राज्य दे सके। और मुझे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए तुम्हें अमायरा से प्यार करने के बावजूद अरुणिमा के साथ सोना पड़े। अपने इतने सालों के खेल को मैं तुम्हारी वजह से खराब नहीं होने दूंगी आस्तिक, इसलिए चुपचाप वही करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। बस एक और साल के लिए तुम्हें अरुणिमा को बर्दाश्त करना है, उसके बाद जैसा तुमने सोचा है वैसा ही करना। जानता हूँ माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? आप जानती हैं कि मैं अमायरा से प्यार करता हूँ, फिर भी मैंने अरुणिमा से शादी की क्योंकि आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि एक साल के बाद ये मुसीबत मेरे सर से हट जाएगी। और अब आप कह रही हैं कि मैं इसके साथ एक बच्चा करूँ? मैं उस लड़की की शक्ल देखना पसंद नहीं करता, उसके साथ सोना तो दूर की बात है। आस्तिक झुंझलाते हुए गुस्से में अपनी माँ को देखता है तो नेहा जी अपनी जगह से खड़े होकर कहती हैं, अगर शक्ल नहीं देखनी है तो आंखों पर कपड़ा बांध लेना, लेकिन अगले एक साल तक तुम्हें अरुणिमा को अपने साथ रखना होगा और उसके साथ इस खानदान को एक वारिस देना होगा। एक बार बच्चा हो जाए और तुम्हें अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया जाए, उसके बाद तुम चाहो तो अरुणिमा को छोड़ सकते हो। आस्तिक हैरानी से नेहा जी को देखता है तो नेहा जी कहती हैं, बच्चे की फिक्र मत करो, इतना बड़ा खानदान है, घर के किसी कोने में पड़ा पल जाएगा, और अच्छा है तो अरुणिमा उसे अपने साथ भी लेकर जा सकती है। तुम्हें ना तो उस लड़की से कोई मतलब है और बच्चा तो तुम वैसे भी नहीं चाहते हो। आस्तिक गुस्से में एक दीवार के पास चला जाता है और गुस्से में अपने हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। नेहा जी वहां से चली जाती हैं। आस्तिक कमरे में अकेला रह जाता है। वो कस के अपनी आंखें बंद करता है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बड़बड़ाता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। आई एम सॉरी अमायरा स्वीट हार्ट, शायद तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे और थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जानता हूं जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ा है तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन माँ सही कह रही हैं, उन्होंने इतने साल तक इस खेल को जारी रखा ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। मैं अपनी माँ के बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगी। जब तक पुष्कर रायचंद को वारिस नहीं मिलेगा तब तक वो मुझे अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनाएंगे, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये करना होगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस जहरीले रास्ते से गुजरना ही होगा। आस्तिक ने स्टडी रूम के कॉर्नर पर लगे बार काउंटर से एक बोतल निकाली और उसे लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे पीते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वो पल याद करने लगा जब वो और अमायरा साथ थे और कैसे उसकी जिंदगी से अमायरा को निकालकर अरुणिमा को शामिल किया गया था।